तफसीर सोलवा पारा सूरत अल कहफ आयत नंबर 75। आप देखें कि पिछली आयत में हजरत मूसा अलैहि सलाम और खिजर अलैहि सलाम का वाकया शुरू हुआ है सूरत अल कहफ की आयत नंबर 60 से, और मूसा अलैहि सलाम ने खिजर अलैहि सलाम के साथ जो है वो सफर शुरू किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि अल्लाह ताला ने जो तालीम आपको सिखाई है वो मैं सीखना चाहता हूँ। और खिजर अलैहि सलाम ने मूसा अलैहि सलाम से ये कहा था कि आप मेरे साथ चल सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आप मेरे साथ सबर नहीं कर सकते। और खिजर अलैहि सलाम ने ये रीजन भी दी थी कि जिस चीज की आपको खबर ना हो आखिर आप इस पर सबर कर भी कैसे सकते हैं। लेकिन मूसा अलैहि सलाम जो एक अच्छे तालिबे इल्म थे और उनके अंदर विल पावर पाई जाती थी और उन्हें बहुत शौक भी था, उन्होंने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह आप मुझे साबिर लोगों में से पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। और अब आप देखें कि खिजर अलैहि सलाम जो एक अच्छे उस्ताद भी थे, उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात ना पूछे जब तक कि मैं खुद इसका आपसे जिक्र ना करूं। होता क्या है कि जब आमतौर पे जो है वो उस्ताद पढ़ाता है तो तालबिल ये चाहता है कि जल्दी जल्दी फौरन सारा सीख ले, और वो जो है वो सब्र से काम नहीं लेता क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं वो सुलझती चली जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मसाइल वाजे होते चले जाते हैं। और जैसे होता नहीं कि बच्चे को बहुत भूख लगी हो तो 2-3 निवालों में ही सारा खाना वो खत्म करना चाहता है। तो बहरहाल अब खिजर अलैहि सलाम ने कहा था कि आपने मुझसे सवाल नहीं पूछना जब तक कि मैं आपसे खुद जिक्र ना करूं। और 15वें पारे में आपने आखिर में दो वाकयात पढ़े, एक तो खिजर अलैहि सलाम का कश्ती में सुराख करना और मूसा अलैहि सलाम का टोकना कि लकद जेता शैन इमरा, कि ये तो आपने बड़ी ही सख्त बात कह दी है, सख्त बात कर दी है कि कश्ती में सुराख कर दिया। और फिर खिजर अलैहि सलाम कहते हैं कि आपको मना किया था कि आप बोलेंगे नहीं और आप सबर नहीं कर सकेंगे। तो फिर मूसा अलैहि सलाम माजरत पेश करते हैं कि मुझसे गलती हो गई है तो मेरे साथ आप नरमी का मामला करें। दूसरी बात क्या होती है कि खिजर अलैहिस्सलाम आगे चलते हैं तो एक लड़का मिलता है, उसे वो कत्ल कर देते हैं। अब फिर मूसा अलैहिस्सलाम टोकते हैं कि आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, लकद जेता शैन नुकरा, ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। अब आयत नंबर 75 सूरत अल कहफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, काला अलम अकुल्ला का, कि क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा था, इन्नका लन तस्तती या मा या सबरा, कि तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, काला, कहते हैं, इन सअल तुका, कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे सवाल करूं, अनशई इन किसी चीज के बारे में, बादहा इसके बाद, यानी इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, फला तो साहिबनी, तो आप मुझे अपने साथ मत रखिए। अब यहां पे देखें तो साहिबनी है और स्वाद हाबा सोहबत से है, और सोहबत के माने क्या होते हैं कि किसी का जो है वो साथ होना, इकट्ठा होना। तो यहां पर जो है फरमाया कि अगर मैं इसके बाद आपसे कोई सवाल पूछूं तो फला तुसाहिबनी, तो आप मुझे अपने साथ ना रखें, कद बलगता मिल लदुन्नी उजरा, लीजिए अब तो मेरी तरफ से आपको उजर मिल गया। तो अब यहां पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है ये उजर रखते हैं, ये बात कहते हैं। अब ये नहीं कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि पहली दफा मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि मुझसे गलती हो गई है, ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, पहली दफा कहा था कि मुझसे जो है वो गलती हो गई है। और दूसरी दफा जो है क्या कहा था कि دوسری دفعہ انہوں نے یہ بات کہی تھی جب انہوں نے جو ہے وہ لڑکے کو بے گناہ لڑکے کی جان لے لی تھی کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ نے مجھے اپنے ساتھ جو ہے وہ نہیں رکھنا اور میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا، یعنی اب یہ بات طے ہوگی ہے میری اور آپ کی. فن طلاقا، پھر وہ دونوں چلے. اب یہاں پہ بھی فن طلاقان تھا اور نون تسنیے کا تھا جو گر چکا ہے، اور آپ پڑھ چکی ہیں نا کہ توئے لام قاف جو ہے عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب وہ جانور کو چرنے کے لیے اس کی رسی کو کھول دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، تو اس وقت یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. اسی سے عورت کو طلاق دینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ لفظ جو ہے ادھار کے معنی لے کر چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فن طلاقا، پھر وہ دونوں چلے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. اب تیسرا واقعہ ہے، حتی یہاں تک اذا اتایا، جبکہ وہ دونوں پہنچے. اتایان تھا یہاں پہ بھی، نون تسنیے کا گر چکا ہے. اتایان یعنی وہ دونوں پہنچے، تو اتایا وہ دونوں پہنچے. اہل قریتی، ایک گاؤں والوں کے پاس. استطعما، ان دونوں نے کھانا مانگا. الف سین تا جو ہے اس سے مانگنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور طعام کھانے کو کہتے ہیں نا، آپ اردو میں بھی استعمال کرتی ہیں. تو میم الف کے بعد نون بھی تھا تسنیہ کا جو گر چکا ہے. استطعما تھا، نون گر چکا ہے تو الف سین تا سے مانگنے کے معنی پیدا ہو گئے، اور توئے عین میم جو ہے کھانے کو کہتے ہیں. تو استطعما، ان دونوں نے کھانا مانگا. کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے. کس سے مانگا؟ اہلہا، اہل گاؤں سے. وہ بستی والے جو تھے نا، قریہ والے، گاؤں والے، ان سے کھانا مانگا. یہ مسافر تھے، جا رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا. فابوا، پھر انہوں نے انکار کیا. پیچھے آپ نے ابلیس کے لیے بھی یہ لفظ پڑھا تھا ابا، کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کا روٹ ہے الف با یا، اس کے معنی ہے انکار کرنا. بستی والوں نے انکار کیا کس چیز سے؟ اَن یُدَیِّفُوهُما، کہ وہ مہمان نوازی کرے ان دونوں کی. دواد یا فا، واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اور ضعیف کا لفظ جو ہے یہ ضیوف، مہمانوں کو بھی کہتے ہیں، اور ضعیف جو ہے وہ مہمان نوازی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دواد یا فا کے اصل معنی ہوتے ہیں ایک جانب مائل ہونا، کسی کے پاس ٹھہرنے کے لیے اس کی طرف مائل ہونا. اس لیے مہمان کو ضعیف کہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کسی کے پاس ٹھہرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے. اور ضیافت بھی آپ نے سنائی ہے، مہمان نوازی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. بستی والوں نے ان دونوں مسافروں کی مہمان نوازی سے انکار کیا. اب آپ دیکھیں کہ بستی والوں کا اخلاق کیسا تھا، کہ یہ مسافر تھے اور انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، لیکن گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. فوجہ دان، الف کے بعد پھر نون ہے، نون گر چکا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ تسنیہ کا نون ہے، اکثر گر جاتا ہے. فوجہ دان، تو فوجہ دا، بس ان دونوں نے پایا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے پایا. فیہا، اس میں، اس بستی میں ان دونوں نے دیکھا یا پایا. جدارن، ایک دیوار کو. جدار جو ہے یہ دیوار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا روٹ ہے جیم دال را، اور عام طور پہ دیوار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور دیوار کے لیے آپ جو ہے وہ اور لفظ بھی پڑھیں گی آگے اسی صورت میں، سدا کا لفظ پڑھیں گی اور ردما کا لفظ پڑھیں گی، اور صورت کے لیے بھی آپ یہ لفظ دیوار کا پہلے پڑھ چکی ہیں، سین و را. तो इनमें क्या फर्क है? यानी जिदार का जो लफ्ज है ये मकान या कले की दीवारों में से कोई एक दीवार, आम दीवार के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और दीवार के लिए कुरान में 5 लफ्ज आए हैं। पहला जिदार का है, दूसरा सद्दा का है, तीसरा रदम है, चौथा सूर है। सूरत है ना, सूर है, और पांचवा बुनियान है। और जिदार की जमा है जुदुर और जुदरान। तो इन दोनों ने देखा कि एक दीवार है, इन्होंने एक दीवार को देखा, युरीदु जो चाहती थी, यानी दीवार का हाल ये था कि अय्यन कद्दा कि वो गिर पड़े। नून काफ द्वाद, नून काफ द्वाद जो है इसके मानी सुराख के भी होते हैं और इसके मानी गिरने के भी होते हैं। जैसे जाहिर है किसी चीज में सुराख हो जाता है तो सुराख होकर वो चीज जैसे गिरती जाती है ना। तो इन्होंने एक दीवार को देखा, वो दीवार जो थी वो गिरा ही चाहती थी। फाकामहू, बस इन्होंने उसको सीधा कर दिया। अब आप देखें कि उन दोनों ने एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, तो उसको ठीक किसने किया? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने किया। फाकामहू, बस उसको खिजर अलैहिस्सलाम ने ठीक कर दिया। काला लऊ शेता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा। अब मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, फिर बोल पड़े, कहने लगे, लऊ शेता, अगर तू चाहता, लत्तखज़्ता, अलबत्ता जरूर ले लेता, अलैहि अजरा, इस पर मुआवजा, कि अगर आप चाहते तो इस काम पर मुआवजा ले सकते थे। अब आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा कि अगर आप चाहते तो इस पर मुआवजा ले सकते थे, इसकी क्या वजह थी? इसकी ये वजह थी कि बस्ती वाले लोग बखील थे, लईम थे, उन्होंने मेहमानों की मेहमान नवाजी से इनकार किया था। अब आप देखिए कि मुसाफिरों को खाना खिलाना, मेहमान नवाजी करना हर शरीयत की इखलाकी तालीमात का एक अहम हिस्सा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेहमान नवाजी को ईमान का तकाजा करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान की इज्जत और तकरीम करे। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयुकरिम दैफा। तो मेहमान की इज्जत करना ये ईमान का तकाजा है। अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने का तकाजा क्या है? मेहमान की इज्जत अफजाई करना, उसकी मेहमान नवाजी करना। मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती वालों के रवैये से पहले ही गमजदा थे, उनका दिल परेशान था, और मुसाफिर भी थे, जरूरतमंद थे, खाने की जरूरत भी थी, और बस्ती वालों ने खाना देने से इनकार किया था। तो इसलिए जब खिजर अलैहिस्सलाम ने जो है वो दीवार को ठीक कर दिया, सही बुखारी की रवायत में है कि खिजर अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को हाथ लगाया और वो अल्लाह के हुक्म से मौजाना तौर पर सीधी हो गई। तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि बिला मुआवजा इन पर एहसान करने की जरूरत नहीं थी, बस्ती वाले इस लायक नहीं थे कि इनके साथ ऐसा एहसान किया जाता। काला लऊ शिता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप चाहते तो इस काम की इनसे उजरत ले सकते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पहला इतराज जो किया था वो भूल कर किया था, दूसरा जो है वो शर्त के तौर पर किया था कि अगर मैं दोबारा बोलूं तो फिर आप मुझे अपने साथ ना रखें, और तीसरा उन्होंने जानबूझकर किया है। इस पर अब खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं, कौल हाजा फिराकु बैनी व बैनिक। खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये जुदाई है, फिराक फरक से है, اسی سے فاروق ہے، اسی سے فرقان ہے، اسی سے فرقہ ہے. تو ہذا فراقو، یہ جدائی ہے، بینی و بینی کا، مجھ میں اور تجھ میں، کہ اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا. سأنبئک کا، عنقریب میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بتعویلی، بھید، تعبیر، کہ یہ جو تین اہم واقعات تھے ان کی میں آپ کو تعبیر بتاتا ہوں. مالم تستطیع علیہ صبرا، جن پر آپ صبر نہ کر سکے. تو ان واقعات کی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتا دی کہ تیسرا موقع آ گیا جس پر آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اور اب خود تیرے کہنے کے مطابق اب میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. تو جدائی سے پہلے میں تمہیں تینوں واقعات کی جو اصل حقیقت ہے اس سے باخبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی غلطی نہ ہو. اور آپ نے پیچھے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خضر علیہ السلام سے ملے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 66 میں خضر علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ نبوت کا علم تھا. تو نبوت کا علم اور ہے، اور وہ علم جو کہ خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا یہ تکوینی امور کا علم ہے، تکوینی امور کا علم، یعنی شریعت کے علم کے مطابق یہ کام جائز نہیں تھے. جو موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی اس کے مطابق یہ کام جائز نہیں تھے، لیکن خضر علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا تو اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت یہ تکوینی امور کا علم تھا، اور اس لیے خضر علیہ السلام نے جو کام کیے، اور یہ تکوینی امور کا علم تھا، عام علم نہیں تھا، نبوت اور رسالت کے یہ خلاف تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس پر خاموش نہ رہ سکے اور اس پر جو ہے وہ بول پڑے. تو اب یہاں پر جو ہے اس کی تعبیر بتا رہے ہیں، اس کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ بات کیا تھی، کہ اما سفینہ تو، رہی بات کشتی کی. سفینہ تو، یہ لفظ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، سین فا نون جو ہے اس کے معنی ہے چھیلنا، نرم بنانا، ایسی کشتی جو تراش خراش کر ہموار اور آرام دہ بنائی گئی ہو. ویسے کشتی کے لیے فل کا لفظ بھی آتا ہے، جاریہ کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن سفینہ جو ہے یہ آرام دہ ہموار کشتی کو کہتے ہیں. فرمایا جہاں تک بات کشتی کی ہے، فکانت لی مساکینہ، وہ تھی چند غریب آدمیوں کی، یا ملون فی البحری، جو سمندر میں دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. فارتو ان عیبہا، میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں. تو میں نے کیا ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو جو ہے وہ عیبدار کر دوں، اس کو خراب کر دوں. وکانا وراءہم ملکن، کیونکہ اس کے آگے جو ہے ایک بادشاہ رہتا تھا. وراءہم کے معنی کیا ہے کہ ان سے آگے جو ہے ایک بادشاہ رہتا تھا، یعنی جہاں پہ سمندر میں کشتی چلتی تھی اس سے آگے کی طرف ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو وہاں پہ رہتا تھا، وہ ظالم تھا. وہ کیا کرتا تھا، یاخذو کل سفینۃ غصبا، وہ ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. غید، سواد، با، اس کے معنی ہے کہ کسی چیز کو ظلم سے چھینا، زبردستی چھینا. تو وہ ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا وہ لڑکا. فَكَانَ أَبَاوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، उसके वालदैन दोनों मोमिन थे। अगर अब आप देखें ये मोमिन है, इनको आप सर्कल कर ले, अगर होता मोमिनीन तो ज्यादा लोगों की बात हो रही है। चूंकि वो जो लड़का था उसकी एक अम्मी और एक अब्बू दो की बात हो रही है ना, तो तस्मिया का सीगा इस्तेमाल किया गया कि उस लड़के के दोनों वालदेन जो थे वो मोमिन थे, मोमिनीन, वो दोनों मोमिन थे। फखशीना, बस हमें खदशा हुआ, फखशीना फिर हमें अंदेशा हुआ, युरहिकहुमा के फसा दे वो इन्हें, कि वो आजिज कर दे इनको। अब आप देखें कि युरहिकहुमा, आप पीछे आयत 73 में पढ़ चुकी हैं, तुरहिकनी, इसका रूट है रा हा काफ, इसके मानी है एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का चढ़ जाना, यानी किसी चीज पर कोई और चीज चढ़ जाए और उसे दबा ले, उसे छुपा ले। जैसे चेहरे के ऊपर जो है वो, अगर नीचे चेहरे पर स्याहियां पड़ी हुई हैं, आप मेकअप करती हैं, तो मेकअप जो है वो नीचे की स्याही को छुपा लेता है, इस तरह भी ये लफ्ज आ सकता है। और अगर मेकअप हुआ हुआ है, यानी चेहरा सुर्खो सफेद है और इस पर काला काला लग जाए, ऐसे भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तरहकुहा कतरा, तरहकुहुम जिल्ला, कि जिल्लत उन पर छा रही होगी। तो किसी चीज पर अपना असर डालना, उसको उस पर चढ़कर उसको दबा लेना, उसको छुपा देना, इस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे फरमाया ये हमें ये खतरा हुआ, युरहिका हुआ कि वो लड़का जो है वो क्या करेगा, कि वो अपने जो नेक वालदेन हैं वो उन पर जो है वो छा जाएगा, वो उन्हें दबाएगा, वो उन्हें जो है आजिज कर देगा, वो उन्हें तंग करेगा। युरहिका हुमा, कि वो उन दोनों को तंग करेगा, किस तरह, तुगयान हुआ कुफरा, यहाँ पे हालत बताई हुई है। तुगयानन, आपको पता है समंदर में तुगयानी आती है तो हर तरफ तबाही मच जाती है, इर्द गिर्द की बस्तियां, गांव, इलाके, फसलें और जानवर सब उसका जो है वो निशाना बनते हैं। तो तुगयानी का लफ्ज सरकशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबरदस्ती करना किसी पर, हद से गुजर जाना। और कुफरन जो है ये इनकार करने को कहते हैं। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें ये खतरा हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफर से अपने वालदैन को तंग करेगा। अब आप देखें कि आम शख्स को नहीं पता चल सकता कि फलां लड़का बड़ा होकर सरकश निकलेगा और काफिर निकलेगा, और ये अल्लाह की भेजी हुई शरीयत में, किसी भी शरीयत में ये जायज नहीं था कि किसी लड़के को, बेगुनाह लड़के को कोई मार डाले कि ये बड़ा होकर जो है ये काफिर बन सकता है या वालदैन को तंग कर सकता है। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने जो ये काम किया था, ये मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में तो जायज ही नहीं था, लेकिन खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। क्यों किया खिजर अलैहिस्सलाम ने ये काम? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था और ये अल्लाह की रहमत थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीछे जो है आपने ये बात पढ़ी थी ना कि खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने पास से इल्म दिया था। आयत 65 को आप याद करें, फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतेनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था। तो ये अल्लाह की रहमत थी और अपनी तरफ से उसको एक खास इल्म अता किया था। तो ये खास इल्म जो कि खिजर अलैहिस्सलाम के पास था, ये क्या था कि ये आम इल्म नहीं था, ये अल्लाह की रहमत थी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिजर अलैहिस्सलाम को अपना इल्म दिया, उसे उन्हें ये बात बताई कि फलां लड़के को आप कत्ल कर दें, इसलिए कि ये बड़ा होकर जो है ये अपने वालदेन को सताएगा, ये अपने वालदैन को तंग करेगा। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि यदि आम तौर पे कोई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये इल्म जो कि खिजर अलैहिस्सलाम के पास था, तो ये तकवीनी अहकामात के तहत है। ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला फरिश्तों से कह देते हैं कि फलां जो है उसकी जान निकाली जाए, या फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला कोई भी काम जो है वो करवाते हैं। तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसको चाहे जिंदगी दे दे, जिसको चाहे मौत दे दे, जिसको जिसके चाहे कारोबार को खत्म कर दे, कौमों पर अजाब ले आए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने खिजर अलैहिस्सलाम के जरिए जो है वो चंद ऐसे काम करवाए जो कि आम शरीयत की रूह से जायज नहीं थे, यानी पैगंबर के पास जो इल्म होता है उसके मुताबिक वो ठीक नहीं थे। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो परेशान हुए, और खिजर अलैहिस्सलाम जो है वो ये बात बता रहे हैं कि ये काम जो मैंने किए हैं ये अल्लाह की खास इजाजत से किए हैं। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 81 है, 81 सूरत अल कहफ, फअरदना, फरमाया पस चाहा हमने युब दिलाहुमा, के बदला दे इन दोनों को रब्बुहुमा, इन दोनों का परवरदिगार, कि वो जो लड़का जो है हमने मैंने कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ताला का ये इरादा था कि वो वालदैन को इस सरकिश और काफिर लड़के की बजाय बदले में दे दे खैरम मिनहु, इससे बेहतरीन, इससे अच्छा बेस्ट बेटा दे। वो बेटा कैसा होगा? ज़कातं अक़रबा रुहमा। यहाँ पे सिफ्त के तौर पर ज़कात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और आपको पता है कि जब हम अपने पैसों में से कुछ पैसे अल्लाह के रास्ते में निकालते हैं तो पैसे पाकीजा हो जाते हैं, पाक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो लड़का जो है जो अल्लाह ताला उन्हें देगा तो वो पाकीजा होगा, इखलाक के लिहाज से वो बेहतरीन होगा, वह अकरबा और नजदीक तर होगा रोहमा, शफकत में, मोहब्बत में। तो वो लड़का जो है वो इखलाक के एतबार से अच्छा होगा, दीन के एतबार से पाकीजा होगा, और वो माँ बाप के साथ जो है वो मोहब्बत करेगा। तो ज़कात का लफ्ज जो है मुफस्सरीन कहते हैं कि दीन में पाकीजगी के लिए आया है, व अकरबा रोहमा जो है ये माँ बाप के साथ मोहब्बत करना, शफकत करना, रहमत करना, इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ये हो गए दो वाक्यात। अब तीसरे वाक्य की बात है और आयत नंबर 82 है, वह अम्मल जिदारू, और रही बात दीवार की, यानी दीवार का किस्सा ये है, फकाना ली गुला मैनी, के पस वो दीवार जो थी वो दो लड़कों की थी। लड़के कौन थे? यतीम मैनी, दोनों यतीम थे। यानून, यानून जो है ये तस्निया की निशानी है दो की। वाहिद के आखिर में अलिफ नून भी आ सकता है और या नून भी आ सकता है। गुलामैने, यतीमैने, दो लड़के, दोनों यतीम, फिल मदीना थी, मदीना में। तो दो लड़के थे, दो बेटे थे, तो यतीम लड़के थे जो इस शहर में रहते थे। वकाना ताहताहू कंजुल्लाहुमा, और था नीचे इसके खजाना उन दोनों के लिए। काफ नून ज़े का लफ्ज़ जो है ये खजाने के लिए इस्तेमाल होता है। पोशीदा जमा शुदा माल को कर्ज कहा जाता है, ऐसा माल जो पोशीदा हो और जमा शुदा हो उसके लिए कर्ज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और ये खजाना दीवार के नीचे दफन था। वैसे आपने खजाने के लिए एक तो किंतार लफ्ज पढ़ा है, किंतार, दूसरा खजाना भी आप पढ़ती है ना, तो किरदार जो है ये माल और दौलत की कसीर मिकदार को कहते हैं। खजाना जो होता ऐसी नकदी या स्टोर या जखीरे को कहते हैं जिसकी हिफाजत का इंतजाम हो। और जो कर्ज है ये पोशीदा जमा शुदा माल है। तो दीवार के नीचे इन दोनों के लिए पोशीदा खजाना था। वकाना अबू हुमा स्वालिहा। अब खास बात, इसको आप सर्कल करें, और इन दोनों लड़कों का बाप एक नेक आदमी था। अब आप देखें कि जो बाप फौत हो चुका था वो एक नेक आदमी था, और उसके नेक होने की बरकत से अल्लाह ताला ने इसकी औलाद के माल को महफूज करना चाहा। क्यों? अगर दीवार गिर जाती तो लोग वो माल लूट कर ले जाते, और ये माल यतीम लड़कों का जो है, यतीम लड़कों के लिए उसके बाप ने जो है वो संभाल कर रखा हुआ था। और अल्लाह ताला चाहते थे कि वो जो बाप की नेकी है उसकी बरकत की वजह से वो जो खजाना था वो बच्चों को मिलता, बच्चे छोटे थे, तो दीवार इसलिए बना दी गई ताकि जब बच्चे जवानी को पहुंचे तो अपना खजाना जो है वो निकाल सके। तो असल बात क्या है, वकाना अबूहुमा सालिहा, कि इन दोनों का बाप जो था वो नेक आदमी था। इससे ये बात पता चलती है कि वालदैन की जो नेकी है ना, आप देखें कि उसके असरात जो हैं वो औलाद को भी पहुंचते हैं। अगर किसी के वालदैन जो हैं वो नेक हैं, तो नेक बंदे की नेकी और उसकी सलाहियत की वजह से उसकी नेकी के असरात उसकी औलाद को, औलाद की औलाद को, उसके खानदान को, और बल्कि इर्द गिर्द के घरों तक भी पहुंचते हैं। मसलन पड़ोस में कोई नेक रहता है, या किसी घर के अंदर कोई दादा दादी नाना नानी कोई बुजुर्ग है, नेक है, तो उसकी नेकी की वजह से अल्लाह ताला उस घर पर जो है वो रहमतें और बरकतें जो है वो नाजिल करते हैं। इमाम शिबली रहमतुल्लाह जब फौत हो गए तो कुफार ने दरियाए दजला को अबूर करके बगदाद पर कब्जा कर लिया, और उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि हम पर दोहरी मुसीबत आई है, एक शिबली की वफात की और दूसरा दैलम का कब्जा। तो जब तक शिबली रहमतुल्लाह मौजूद थे तो बगदाद जो है उसका शहर, उसका पूरा इलाका जो है वो एक हिफाजत में था, एक अमान में था। तो अगर किसी बस्ती में, किसी इलाके में भी कोई नेक लोग होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, सुलहा होते हैं, तो उन पर जो है वो लोगों को उनसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी इज्जत के असरात जो हैं वो इर्द गिर्द के इलाकों पर भी और उनके घर वालों पर भी, जो उनकी नेकी के असरात जो हैं वो इर्द गिर्द के इलाकों पर भी होते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि एक दफा किसी ने अपने घर का किराया जो था वो ज्यादा मांगा, तो उन्होंने पूछा कि ये घर तो आमतौर पे इसका किराया इतना होता है, तो आप इसका इतना किराया क्यों कह रहे हैं? तो उसने कहा कि असल में पड़ोस में जो है ना फलां स्कॉलर रहते हैं जो बड़ा नेक है ना। तो बहरहाल असल बात क्या है कि वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप एक नेक आदमी था। हमें भी अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि हम कैसे वालदैन है ना, और वालदैन की नेकी जो है औलाद के लिए जानी और माली हिफाजत का सबब बनती है। और मुफस्सरीन ये भी कहते हैं एक राय यह है कि दोनों यतीमों के बाप ने माल दफन किया था, और एक राय यह है कि इनके जैसे दादा परदादा उन्होंने जो है ये माल जो है इसको दीवार के नीचे जो है वो दफन किया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तिर्मिजी की रवायत है, कि अल्लाह ताला स्वाले आदमी की औलाद और इसकी औलाद की औलाद, इसके खानदान वालों और इसके इर्द गिर्द के खानदानों की हिफाजत फरमाता है, وہ عید کے درمیان جب تک ہوتا ہے سبھی اس کی وجہ سے اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں اس کی دلیل میں سورۃ الاعراف کی آیت 196 آپ نوٹ کر لیں کہ اس کی دلیل میں سورۃ الاعراف کی آیت 196 جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک میرا رب بے شک میرا حامی اور ناصر تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہاں پہ کیا مدد کی کہ اس کے خزانے کی جو نیک آدمی کا خزانہ تھا جو اس نے اپنے بچوں کے لیے حفاظت سے رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے وہاں پہ دیوار بنوا دی جو پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی لیکن گر رہی تھی. تو فَأَرَادَ رَبُّكَ بس تیرے رب نے چاہا يَبْلُغَ کہ جب وہ پہنچے دونوں یبلغان ہے ٹوٹ گر چکا ہے کہ جب وہ دونوں پہنچے اشدہ ہوا وہ دونوں اپنی جوانی کو. یہاں پہ اشدھ کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے اور شید دال دال اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی انتہا اس کی شدت اس کی جوانی کہ جب وہ دونوں بچے جو ہیں وہ بالغ ہو جائیں جوان ہو جائیں وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا تو وہ دونوں اپنا خزانہ نکال لیں. یہاں پہ بھی یستخرجان تھا نون گر چکا ہے اور ہما ہما دونوں کی ضمیر یہ دو کے لیے آتی ہے تثنیہ کے لیے. واحد کے لیے کیا آتا ہے ہو کسی ایک آدمی کے لیے لڑکے کے لیے ہو آتا ہے ہما دو کے لیے آتا ہے ہم سب کے لیے آتا ہے ہا ایک عورت کے لیے آتا ہے ایک مؤنث کے لیے یعنی لڑکی بھی ہو سکتی ہے اور ہما ہما کا صیغہ دونوں کا ایک جیسا ہے اور پھر مردوں کے لیے جمع کے لیے ہم آتا ہے اور عورتوں کے لیے ہننا آتا ہے. بہرحال فرمایا تاکہ پھر وہ دونوں اپنا خزانہ نکال لیں رحمت من ربک یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا. اب یہاں پہ اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں رحمت من ربک یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا یعنی میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. وضاحت کر دیتے ہیں کہ ان کاموں میں سے کوئی کام بھی انہوں نے اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي اور میں نے اس کو نہیں کیا اپنی مرضی سے. ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہ کر سکے. تو یہاں پر جو ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ختم ہوتا ہے. اور ضروری ہے کہ یہاں پر جو ہے دیکھا جائے کہ عام طور پر یہ قصہ اور کہانی کے طور پر جو ہے یہ سنایا جاتا ہے لیکن اس واقعے سے عملی زندگی کے لیے عمل کے کیا اصول ہمارے سامنے آتے ہیں اس واقعے سے کیا فوائد جو ہے وہ ملتے ہیں. آئیے ان کو ایک دفعہ ہم اپنے پاس جو ہے وہ ایک دفعہ سرسری نظر سے ان سے گزر جاتے ہیں. ان میں سے پہلی بات جو ہمیں اس واقعے سے پتا چلتی ہے کہ کسی شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے سب سے زیادہ اچھا آتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ جب وہ خطبہ دے رہے تھے لیکچر دے رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم حاصل سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے سب سے بڑا عالم دنیا میں کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ میں. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی ان کا یہ دعویٰ کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے اندر جو ہے وہ عاجزی اور انکساری پیدا کرنی چاہیے. مثلاً ہو سکتا ہے آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شفا مل رہی ہو لیکن अपने ते ही खुद ये सोचना कि मेरे जैसा डॉक्टर और कोई नहीं हो सकता, ये बात जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं है। इसी तरह हो सकता है आप बहुत अच्छी मुदरसा हो, बहुत अच्छा आप दर्स देती हो, आपकी वजह से एक दुनिया फैज हासिल कर रही हो, लेकिन आप में से या मैं या कोई किसी का ये सोचना कि मेरे जैसा दर्स और कोई नहीं दे सकता, तो ये किबर की निशानी है। इसी तरह हो सकता है आप खाना बहुत अच्छा पकाती हो, आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाती हो और आप मशवरे बहुत अच्छे देती हो सकता है बहुत अकलमंद हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी का ये दावा करना कि मैं ऐसी और ऐसी हूं, ये चीज जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो पहली बात क्या पता चली कि हमेशा आजी और इनकसारी का इजहार किया जाए और अपने अंदर जो अल्लाह ताला ने हमें या आपको जो है वो जो सलाहियतें दी हैं, जो काबिलियतें दी हैं, जो सिफात से नवाजा है, तो किबर में मुब्तिला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये पता चलती है कि सफर के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून को साथ लेकर चले, तो तरह सफर करने की बजाय अगर कोई साथ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हमें मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से ये बात पता चलती है। तीसरी बात हमें ये पता चलती है कि तालिबे इल्म को उस्ताद के पास जाना चाहिए, उस्ताद को अपने पास बुलाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, खिजर अलैहिस्सलाम को तो अपने पास नहीं बुलाते ना, और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अनहो, हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रजी अल्लाह अनहो सहाबी के पास एक हदीस लेने के लिए एक माह का सफर करके गए। तो इससे क्या बात पता चलती है कि तालबिल्म जो है वो उस्ताद के पास जाता है, जो प्यासा होता है ना वो कुएं के पास जाता है, और इससे इल्म की अहमियत और कदर और मंजिलत का पता चलता है और उस्ताद की इज्जत और एहतराम का भी पता चलता है। फिर इसके बाद जो है हमें चौथी अहम बात ये पता चलती है कि तालबिल्म को इल्म हासिल करने से कभी बेनियाज नहीं होना चाहिए, खा उम्र का कोई हिस्सा क्यों ना हो, जवानी हो, बचपन हो, बुढ़ापा हो, और इल्म जहां से भी मिले, सही इल्म हो जब भी मिले और जहां से मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी बड़ी उम्र होने के बाद जो है वो इल्म हासिल किया है, तो ये बात भी हमें पता चलती है। अब आप देख लें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जो है वो किसी बात की कोई परवाह नहीं की, बस जो ही पता चला, ये नहीं कि वो छोटे हैं, वो बड़े हैं, वो कौन है, फौरन उसके लिए उन्होंने सफर जो है वो सफर का इरादा कर लिया। अच्छा, एक बात और पता चलती है, जैसे एक इल्म तो किसी के पास हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरा इल्म उसके पास हो। जैसे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास इल्म था वो तो रात का इल्म था, और जो खिजर अलैहिस्सलाम के पास था वो तकवीनी उमूर का इल्म था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को पता चलता है कि उनको एक खास इल्म अल्लाह ने दिया है जो उनको नहीं आता, तो वो उसको सीखने के लिए जो है वो चल पड़ते हैं। फिर छठी बात जो बहुत ही अहम है कि इल्म के हासिल करने के लिए सुस्ती नहीं करनी चाहिए, कोताही नहीं करनी चाहिए। अभी आप ये सोचे कि अच्छा, 2 साल का कोर्स, 1 साल का कोर्स, रात के वक्त क्लास, बड़ी नींद आती है, बड़े थक जाते हैं और फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो याद रखें कि वो तालिबे इल्म जो कि इल्म के हुसूल में सुस्ती और कोताही करता है और कम ख्वाबी यानी बेदारी की और भूख प्यास की वो लज्जतें बर्दाश्त नहीं करता, वो इल्म नहीं हासिल कर सकता। तो सफर कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कितनी ही मुश्किल क्यों ना लग रही हो और मुश्किल पेश क्यों ना आ रही हो, तो इल्म के रास्ते में तकलीफ को बर्दाश्त करना चाहिए, तकलीफें मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन बगैर तकलीफ के तो मुंह के अंदर एक लुकमा भी नहीं जाता, तो इल्म कैसे हासिल हो जाएगा। और इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अज़्म का अंदाजा करें, उनका ये कहना कि औ अब्दिया हुक्बा, कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है क्या कहते हैं, जो उनके साथ जो है यूशा बिन नून है, उनसे कहते हैं कि हम चलते रहेंगे, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یہ آیت 60 ہے، اس میں وہ اپنی مشن، گول، اپنی ویل پاور اور اپنی جو عزائم ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ میں چلتا رہوں گا، زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا. اور ہمیں یہ بات بھی پتا چلی کہ خضر کے بانی سرسبز کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، کہ خضر علیہ السلام جو تھے ایک دفعہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے جو خشک چٹیل میدان تھی، وہ اس پر بیٹھ گئے تو ان کے پیچھے زمین پر سبزی سبزی نکل کر لہلہانے لگی. تو پیچھے کا جو جگہ تھی وہ ساری سرسبز ہو کر جو ہے وہ لہلہانے لگی. تو اس طرح خضر ان کا نام پڑ گیا، کیونکہ وہ حصہ زمین کا جو ان کے نیچے تھا وہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگا. اس سے ہی بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے. اور پھر یہ کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہاں ملے؟ مجمع البحرین. مفسرین نے کہا ہے یہ بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ ہے. اچھا، ایک اور بات کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بھی بتائی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مجھے کیسے پتا چلے کون سی جگہ ہوگی، کیا نشانی ہوگی کہ جب میں خضر سے ملوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں ایک نشانی بتائی تھی کہ ایک مچھلی لے لو، جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے اور تمہیں چھوڑ کر وہ چلی جائے تو وہی تمہیں جو ہے خضر ملیں گے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مچھلی انہوں نے بطور زادے را کے لی تھی اور اس پر انہوں نے نمک لگایا ہوا تھا، توشے کے طور پر تھی، ان کے ناشتے کے لیے تھی. پھر اس سے ایک بات اور پتا چلتی ہے کہ انسان کو عملی زندگی میں تکلیفیں پیش آتی ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں کہ مچھلی جب پانی میں چلی گئی تو یوشع بن نون جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ہی بھول گئے. اب مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اور سفر کریں، ان کو اور زیادہ اجر و ثواب ملے. تو جو مخلص اور نیک لوگ ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، ملامت نہیں کرتے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی جو تھی جب سمندر میں چلی گئی اور یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، تو یوشع بن نون کو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں ڈانٹا، کچھ برا بلا نہیں کہا، کوئی ملامت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہمیں کتنی تکلیف پہنچی ہے، دیکھو تم نے کتنی غلطی کی ہے. اور غلام تھے، خادم تھے، ناراض ہو سکتے تھے، برا بھلا کہہ سکتے تھے، آپ اپنا محاسبہ کریں. کئی دفعہ نوکر چاکر خادم غلاموں سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ اور یہاں پہ مجھے یوشع بن نون کا کردار بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ فوراً کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے جو ہے نا اس کا ذکر کرنا بھلا دیا، کہ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. تو وہ کہتے ہیں فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، اور یہ بات کہہ کے پھر اگلی پوری بات بتاتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنی غلطی کا فوراً اقرار کرنا چاہیے، عذر پیش کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ غلطی ہو گئی، شیطان نے غلطی کروا دی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور دوسری طرف جو ذمہ دار ہے اس کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ملامت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ برا بھلا کہنے سے کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں اس سے ملاقات کے آداب بھی پتا چلتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو دیکھتے ہی سلام کیا. تو جب بھی آپ کی کسی سے ملاقات ہو تو فوراً اس کو سلام کرنا چاہیے، السلام قبل الکلام. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ طالب علم کے اندر علم سیکھنے کی پیاس ہونی چاہیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہیں علم سیکھنے کا بہت شوق تھا. और उन्होंने अपने उस्ताद खिजर अलैहिस्सलाम से कहा कि हल अत्तबियु का, कि क्या मैं आपके साथ जो है वो रह सकता हूँ। हल अत्तबियु का अला अन तुल्ले मनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, कि अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म दिया है क्या मैं उसको सीखने के लिए आपके साथ रह सकता हूँ। इजाजत भी मांगी, और इसमें उनकी प्यास का भी पता चलता है, उनकी ख्वाहिश का पता चलता है, क्योंकि जब तक तालिबे इल्म के अंदर ख्वाहिश ना हो, प्यास ना हो, सीखने का शौक ना हो, तब तक इल्म नहीं हासिल हो सकता। फिर इस तरह एक बात और पता चलती है कि हो सकता है कि उस्ताद के मिजाज में और तालिबे इल्म के मिजाज में फर्क हो, लेकिन शागिर्द जो है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वादा करे कि वो अपने आप को उस्ताद के मिजाज और मर्जी के मुताबिक जो है वो करेगा, वो उस्ताद की मर्जी या उसकी शरायत के मुताबिक अपने आप को ढालेगा ताकि वो इल्म सीख सके। जैसे मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो इंडिया में उनके एक उस्ताद थे और उनसे वो सीखना चाहते थे, तो उस्ताद ने कहा मेरे पास तो कोई टाइम ही नहीं है, हाँ बस मेरे पास तहज्जुद से पहले का टाइम होता है। तो इनके वालिद इनको लेके जाते और उस्ताद ने ये भी कहा था कि जब आओ तो दरवाजा नहीं खटखटाना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मुझे उस दरवाजा खटखटाने की आवाज आए। हाँ जब तुम आओ, आके दरवाजे के बाहर बैठ जाया करना और मैं ऊपर से देखकर तुम्हें खुद ही बुलाऊंगा। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के पास जाते, दरवाजे के बाहर ही बैठ जाते और उस्ताद ऊपर से देखकर छत से और ऊपर से आवाज देते कि अंदर आ जाओ। और कभी ऐसा भी होता, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो ऊपर से मुझे आवाज देकर कहते हैं कि बरखुरदार आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप वापस चले जाएं, और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो वापिस ले जाते हैं। तो जो बड़े बड़े उलमा हैं उन्होंने इल्म के रास्ते में बड़ी तकलीफें मुशक्कतें जो हैं वो बर्दाश्त की हैं, लेकिन इल्म सीखने के लिए। तो बहरहाल उस्ताद जो है उससे सीखने के लिए शागिर्द जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इल्म सीखने के आदाब हैं या रूल्स रेगुलेशन हैं उन पे शागिर्द जो है वो पूरा उतरे और उतरने की कोशिश करे और उतरने उन शरायत को पूरा करने का वादा करे, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया था ना कि मैं आपका आपका कहना मानूंगा और मैं बेसब्री का मुजाहरा नहीं करूंगा। हाँ अगर उस शागिर से गलती हो जाए तो उसको फिर माजरत पेश करनी चाहिए, उजर पेश करना चाहिए और नरमी की उस्ताद से दरख्वास्त करनी चाहिए, ये बात भी हमें पता चलती है। अच्छा अगर उस्ताद जो है वो तालबे इल्म की जो गलती है उस पर उसको मुतनब्बे करे तो तालबे इल्म जो है उसको अपनी गलती को मानना चाहिए। जैसे आप देखें कि इस सफर में आपने पढ़ा जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम का हुआ है कि उस्ताद कैसे कहते हैं अलम अकुल अलम अकुल, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि तुम मेरे साथ जो है वो सबर ना कर सकोगे। तो आपने पढ़ा ना ये बात, अलम अकुल्ला का इन्ना का लन तस्तती माया सबरा। तो एक दफा आयत नंबर 72 में है, फिर 75 में है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि उस्ताद जो है वो शागिर्द की गलती पर उसको तंबीह करे। तो ये नहीं, जब वादा किया था फिर ध्यान क्यों नहीं रखा। तो जब तक तवज्जो ना दिलाई जाए ना तो तालिबे इल्म को अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। अच्छा इससे यहां पर इसी वाक्य में जो है वो एक और बात पता चलती है कि तालिबे इल्म जो है जब अपने उस्ताद से बात करे, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खिजर अलैहिस्सलाम से की, तो उसमें जो है वो खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके के साथ जो है वो अपनी बात को सामने रखे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कद बलगता मिन लदुन्नी उजरा, कि मेरी तरफ से अब आपके पास जो है वो उजर पहुंच चुका है, अगर आइंदा गलती हो तो फिर ऐसे किया जा सकता है कि आप फिर मतलब मुझे अपने साथ ना रखें ना। और इससे ये बात भी हमें पता चलती है कि अपनी पोजीशन को जरूर वैसे क्लियर करना चाहिए। जैसे जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उजरत जो है वो ले ली जाए, और لیکن خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر اجرت کے کام کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کیوں اجرت چاہ رہے تھے؟ کہ ان لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیا تھا. اچھا اور ہمیں کیا باتیں اس واقعے سے پتا چلتی ہیں؟ ایک بات ہمیں یہ بھی پتا چلتی ہے کہ کسی کا مال چھین لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. لیکن اگر کسی ظالم کے ظلم کا خطرہ ہو کہ وہ کسی غریب آدمی کو نقصان پہنچائے گا، تو اس کے شر کو دفع کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے تو کی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نیک آدمی کی یا نیک والدین کی جو نیکی ہے اس کا اثر جو ہے وہ آگے تک جاتا ہے. اور اس سے جو ہے ہمیں اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یعنی خضر علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق تھا، وہ اللہ کی اجازت سے تھا. اور ایک اور اہم بات جو ہمارے سامنے یہاں پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دو طرح کے علم ہیں، ایک شریعت کا علم اور دوسرا تکوینی نظام کا علم. تکوینی علم کون سا؟ یعنی جو عام طور پر نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. جیسے بعض اوقات بچہ پیدا ہوا ماں کی جان لے لی، تو تکوینی علم کون سے ہے؟ کون فیکون، کہ ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے جیسے اللہ کی مرضی، اللہ فرشتوں کے ذریعے جو کام جیسے چاہے جو ہے وہ لے لے. اور اس پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ خضر علیہ السلام انسان تھے یا وہ ایک فرشتہ تھے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ایک بندہ کہہ کر جو ہے وہ پکارا ہے کہ فوجد عبدا من عبادنا، کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. تو بہرحال ان کی حقیقت اصل میں کیا تھی وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں. اور آخری بات جو میں یہاں پر یہ اس پورے واقعے سے جو آپ کے اور اپنے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ صبر، کیونکہ جو صبر ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور صبر کی عقیدے کے اعتبار سے اس کی تین بنیادیں ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ صبر اوپر سے چپکایا نہیں جا سکتا. تو صبر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تین باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں. نمبر ایک کہ دنیا میں جو کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی اجازت، اس کے ارادے اور مشیت کے تحت ہوتا ہے. اللہ کی اجازت ارادے کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو پہلی چیز جو ہے اگر ہمیں یہ یاد ہو جائے کہ اللہ کی اجازت، اس کے ارادے اور اس کی مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک ٹنڈا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں جو کچھ واقعہ ہوتا ہے اللہ کی اذن اور اجازت سے ہوتا ہے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ حکیم ہے اور اس کا کوئی ارادہ بھی خیر اور حکمت سے خالی نہیں ہے. اگر وہ باطل کو ڈھیل دیتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ باطل سے محبت کرتا ہے یا اللہ ان کے آگے بے بس اور مجبور ہے، یہ ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہے، نیک لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر اور حکمت ہوگی. تو دوسری بات ہمیں کیا سمجھنی ہے کہ اللہ کا ہر کام جو ہے، اللہ کا ہر ارادہ جو ہے اس میں خیر اور حکمت ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے حالات پیش آ رہے ہیں، آپ کی اولاد کی وجہ سے، آپ کی جاب میں، رشتہ داروں میں، جنرلی آپ دیکھیں مسلمانوں کے حالات، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بات آپ سوچیں کہ یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی. اور ہو سکتا ہے فوراً نظر نہیں آتی خیر نا، کہ دیر سویر جب اللہ چاہے گا تو اس میں خیر جو ہے وہ یقیناً اللہ خیر پیدا کرے گا. تیسری بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، और इंसान अल्लाह के इरादों की हिकमत इस दुनिया में मालूम नहीं कर सकता। अल्लाह के इरादे जो हैं उनके असरार सिर्फ आखरत में हमारे सामने आएंगे, वहां पे बेनकाब होंगे। तो तीन बातें जिनका निचोड़ क्या है, नंबर एक, अल्लाह की इजाजत और इरादे के बगैर एक जर्रा भी अपनी जगह से हरकत नहीं करता। नंबर दो, अल्लाह के इरादे खैर और हिकमत से भरे हुए हैं, लबरेज हैं, अल्लाह के इरादे खैर और हिकमत से खाली नहीं है। नंबर तीन, अल्लाह के इरादों की हिकमत इस दुनिया में नहीं पता चलेगी और चल नहीं सकती, आखरत में अल्लाह के इरादे जो हैं उनके असरार जो हैं वो बेनकाब होंगे। तो ये तीन बातें जो सबर के लिहाज से बुनियादों की हैसियत रखती हैं, अगर ये बातें समझ में आ जाए ना तो आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में एक सुकून आ जाए। फिर इंसान ना तकदीर से लड़ नहीं सकता, फिर इंसान पूरी कोशिश करने के बाद फिर क्या करता है कि ये तकदीर में था। और एक बात इससे ये बात पता चलती है कि इंसान का सही रवैया क्या होना चाहिए। नंबर एक, वो अल्लाह के तमाम फैसलों पर साबिर और शाकिर रहे। नंबर दो, वो जो कर सकता है अपना फर्ज अदा करने की कोशिश करता रहे। नंबर तीन, इस बात पर मुतमिन रहे कि आज की तलखियों के अंदर जो शरीरी छुपी हुई है, कल इंशाल्लाह इसके बड़े अच्छे नताइज और असरात जो है वो निकलेंगे। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम का जो वाकया है, इसके जरिए से हम अपनी इस्लाह और तरबियत के पॉइंट जो है वो अपने सामने लाते हैं, ताकि हमारे अंदर सबर पैदा हो, हम मुखालिफ हालात का पूरे अज्म और सबर के साथ मुकाबला कर सकें, और हम अपनी तरबियत कर सकें, और हम अल्लाह के फैसलों पर राजी हो सकें। अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन अमल करने वाला बनाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबसे राजी हो जाए। और असल में हमारे अंदर सबर की कमी है, और हमें अपने अंदर जो है सबर पैदा करना है, और वैसियत वालदैन के भी अपने अंदर सबर पैदा करना है, क्योंकि बच्चे हमें वैसे नजर नहीं आते और वैसे अमली तौर पर वो करते नहीं जो हम चाहते हैं। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बच्चे हैं उनसे भी गलती हो जाती है, इसी तरह मियां बीवी हैं आपस में अपनी जिंदगी को हम सबर के साथ गुजारें। बीवी से गलती हो सकती है, शोहर से गलती हो सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट ये नहीं है कि फौरन जो है वो जुदाई का सोचा जाए, क्योंकि आज हर रोज जो है तकरीबन किसी ना किसी खुला की तलाक की हमें खबर मिलती है, जो दिल को बहुत उदास कर देती है। और पहले क्या होता था कि कभी कभार जो है ऐसी खबर मिलती थी, कभी सालों में या पता नहीं कितने अरसे बाद, और अब यहाँ पे ये खबरें बहुत तेजी से हमें आम होती जा रही हैं। और उसकी भी वजह क्या है, सब्र की कमी है, शुक्र की कमी है, बर्दाश्त की कमी है। तो ये पूरा वाकया जो है वो सब्र जो है सब्र सिखाता है, इस्तकामत सिखाता है, अल्लाह के फैसलों पर राजी होना सिखाता है। और जरूरी नहीं है कि उन बातों की हिकमतें जो है वो दुनिया में पता चल जाए, ये आखरत में पता चलेगी, और उसके लिए भी बेसब्री नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको बेहतरीन मुसलमान बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।